16 अक्टूबर 1969। पहला चैप्टर था सांप को नहीं देखना, मणि को देखना। दूसरा चैप्टर था अवतार समझना। तीसरा चैप्टर था
जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे,
स्लोगन जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। चौथा चैप्टर था
ड्रिल
आश्चर्यदीपन की। यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारे दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारा तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसीलिए यह प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उसकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां है वह कुछ भी नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूं, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहां तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है, इस ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छा है तो नंबर आगे ले सकते हैं, अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकता। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है, जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उनके सिवाय कहां नहीं हो, ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक है। चात्रक बने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है, चात्रक है। यह इस ग्रुप की विशेषता है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र में देखे तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हो, फिर रिजल्ट आने के बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाए और जो भट्टी की छाप सुनाई उसको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। तो बाबा यहाँ पर रूहानी ड्रिल, एक सेकेंड में आवाज में, एक सेकेंड में आवाज से परे, एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए, इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना पाए। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे ही अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना सारे दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। एक तो अमृत वेला करना है और दूसरा, जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है उस समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। ड्रिल करने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि एक तो अमृत वेला करो और तब करो जब बहुत बिजी है। बिजी भी जब है तब अगर आसक्ति वाले कर्म है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे, अनासक्त कर्म। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो क्या होगा, फिर कोई भी कार्य आसक्ति से किया जाता है तो डिटैच नहीं हो सकते। अगर कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो कैसे भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। फाइनल पेपर भयानक और न चाहते हुए अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उसकी भेंट में जो आजकल की परिस्थिति आई वह कुछ भी नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूं, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों और सर्कमस्टांस अपनी तरफ खींच रहे, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। कौन सा? डिटैच होने का। और कौन सा? अशरीरी होने का, देह से बाहर जाने का, आवाज से परे जाने का, व्यक्त स्थिति में स्थित होने का। तब मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? तब कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं? यह भी बात बहुत आवश्यक है। इस ड्रिल में रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम तो सेवा बहुत की है परंतु इस सब्जेक्ट में नंबर कम है, पुण्य बहुत कमाया है, ज्ञान बहुत है परंतु ये नहीं है, इसकी अभ्यास इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकता। तो बाबा कह रहे हैं जो भी कर्म हम करें कैसे करें? अनासक्त भाव से, डिटैच्ड कर्म होंगे तो ही डिटैच हो सकेंगे। अगर अटैचमेंट है कर्मों में तो हम डिटैच नहीं हो सकते। प्रश्न है डिटैच कर्म कैसे करें? डिटैच कैसे रहकर डिटैच कर्म करें?
जैसे आपने बीच में सुनाया था कि आपने प्रैक्टिस की थी सोने की, सोच करने के बीच डिटैच कैसे होते हैं?
प्रैक्टिस या संकल्प इसी बीच सोना है।
बहुत लोगों का बीच में प्रश्न आया अभी, थोड़ा विस्तार से बताओ।
नहीं, वो विस्तार से बाद में, पहले ये प्रश्न है कि डिटैच कैसे होना है। कर्म करते समय डिटैच, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, महान कर्म करते हैं। वो बुरे कर्म, विकर्म, पाप कर्म वो सारा छूट गया है, परंतु जो अच्छे कर्म है उनमें समस्या ये है कि उसमें अटैचमेंट जल्दी उत्पन्न हो जाती है। वो करा रहा है, जैसे आज की मुरली में भी है, ये खिलौना जैसे उस दिन दिखाया था। क्या समझते हो कौन चला रहा था? साइंस उस खिलौनों के चला सकता है तो बाप नहीं चला सकता तुमको? तो अनासक्त भाव तब आएगा जब हम समझेंगे हमें केवल निमित्त बनाया गया है, हमें हटा के किसी और को भी बनाया जा सकता है। हम नहीं भी होंगे तो भी ये कार्य चालू रहेगा। हमें याद है एक बार जो हॉस्पिटल था, हम जब छोटे थे तो हॉस्पिटल के पूरे जो डॉक्टर थे सब छुट्टी पर चले गए थे, तो हम लोग तो तब उस समय छोटे थे, इंटर्न्स थे, फिर भी हॉस्पिटल तो बंद नहीं हुआ था। उनको उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ानी थी, तो सारे डॉक्टर्स जितने थे रेसिडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट, एचओ, हाउस ऑफिसर, सब छुट्टी पर चले गए थे, पर हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ। नर्स सिस्टर्स, जो ब्रदर्स, वो भाई, वो मामा लोग और हम लोगों ने चलाया था एक हफ्ता। मना वो मुंबई में कहते हैं, वो जो ये रहते हैं ना कंपाउंडर मौसी और मामा ऐसे कहते हैं उनको, तो उन्होंने चलाया था। कोई भी अनिवार्य नहीं है। हम अगर सोच रहे हैं कि हमारे बगैर ये कार्य नहीं हो सकता है, ये भ्रांति है हमारी। कोई सोचती है बहन कि मैं यहाँ सेंटर इंचार्ज हूँ इसके लिए चल रहा है, महाभ्रांति है। हो सकता है आप जाने के बाद कोई ऐसा आ जाए जो और अच्छा चला है। हम सोच रहे हैं हम यहाँ है इसके लिए इतनी सेवाएं हो रही है। ब्राह्मण ब्रह्म शब्द थोड़े नजदीक है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं। हो सकता है आप जाने के बाद जो आए वो होगी असली मुरली। स्वयं को अनिवार्य न समझना कि मैं हूं तो सब कुछ हो रहा है, मैं हूं तो सेवाएं हो रही है। मैं नहीं भी हूंगा तो भी सेवाएं होगी और बहुत अच्छी होगी, ये तो मैंने पकड़ रखा है। पकड़ को थोड़ी ढीली करनी है, ठीक है ना मंजू बहन, पकड़ जो है उसको ढीला करना है, छोड़ दो। हर एक ने व्यक्तियों पर पकड़ रखी है, टीचर अपने स्टूडेंट्स पर पकड़ जमा के रहती है, पति अपने पत्नी पर पकड़ जमा के रखता है, पत्नी अपने पति पर पकड़ जमा के रखती है, बच्चे माँ बाप अपने बच्चों पर पकड़ जमाए रखते हैं। इस पकड़ को थोड़ा ढीला कर दो, जितना जोर से पकड़ेंगे, एक रस्सी है जिसको जोर से पकड़ के ऐसे खींच रहे तो हाथ कैसे होता है, छोड़ो उसको। पकड़ना ये जो अस्वाभाविक है, छोड़ना स्वाभाविक है, ये बहुत एक्टिव क्रिया है, ये सहज स्वाभाविक है। छोड़ो हर चीज को, किसी को भी पकड़ के नहीं रखना। प्रवाह है, मोह में प्रवाह नहीं है। गैर मोह जो है, गैर मोह, एक है मोह, एक है गैर मोह, एक है आसक्ति, एक है अनासक्ति। जो अनासक्ति है, जो अमोह है, उसमें प्रवाह प्रवाह है, बाकी जो मोह है उसमें पकड़ है, उसमें दुख है। इसके लिए पहली स्टेप है कि ये कार्य हमें दिया गया, ये हमारा भाग्य है, धन्यवाद दो उसको कि हमें दिया हुआ है, किसी और को भी दिया जा सकता था। हमसे योग्य इस संसार में हजारों आत्माएं हैं, ये तो हमारा भाग्य है जो हमें दिया गया, और हमसे बहुत अच्छी तरह से वो ये कार्य कर सकते हैं, चाहे वो भाषण देना है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो सेवा करना है, या कुछ भी। हम ये भी ना समझे कि ये मेरे में ये विशेषता है, इसके लिए मुझे ये सेवा दी गई है, हमें क्या पता ये विशेषता किसी में और ज्यादा हो सकती है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है अनासक्त कर्मों के लिए कि स्वयं को केवल निमित्त समझना, अनिवार्य नहीं, कोई और भी आ सकता है, और क्या करेंगे, ड्रामा को याद करते रहेंगे, उससे कैसे अनासक्त होंगे, स्वयं को एक्टर फील करेंगे, उससे अनासक्त कैसे होंगे, मैं एक्टर हूं, ड्रामा खेल रहा हूँ, ड्रामा में पार्ट बजा रहा हूँ,
थोड़ी देर के लिए
हाँ, ये अगर सोचेंगे कि ये पार्ट केवल थोड़े ही समय के लिए है तो मैं क्या इससे आसक्ति रखूं, कर्म का फल छोड़ देना, चलो ये भी एक पॉइंट है, जो भी है प्रभु देन है। नहीं, कर्म एक कार्य है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल भाषण देना या लिखना या फिर सेवा करना, कोई भी छोटा सा कर्म है, उसमें हम आसक्त ना हो जाए।
ये करने से पहले तो हो रहा था, नाम नहीं
था। हाँ, वो पहला पॉइंट आ गया कि हम अनिवार्य नहीं है, हम नहीं थे तब भी हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तब भी होगा। समर्पण जो कि हाँ, ये बात की स्टेज है कि करते करते समर्पण और करने के बाद समर्पण, करते करते ही समर्पण भाव थोड़ा मुश्किल है, करने के बाद आसान है। ये कर्म हुआ और हमने अर्पण कर दिया, अभी हमारा इस कर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे वो बहन बता रहे थे ना, सुमन बहन उस दिन, कि कर्म किया लिखते समय, लिखने के बाद ये याद नहीं है क्या लिखा, फिर अर्पण कर दिया, भाषण दिया, भाषण देने के बाद में ये पता नहीं फिर क्या बोला, अर्पण कर दिया। जैसे कल आरती बहन ने एक बहुत पावरफुल पॉइंट कही थी, हमने तो कभी नहीं सुनी इसके पहले, कि हर कर्म हमारा विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा हर कर्म विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटा कर्म, संकल्प करना, बोलना या स्थूल कर्म करना, ये सब कुछ विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक्टर हूं ये समझना, थोड़े देर के लिए आए हैं कर्म करने के लिए, ये कर्म किया और डिटैच्ड, कर्म पूरा हुआ, पार्ट पूरा हुआ, अब आगे का पार्ट, और अनासक्त डिटैच्ड कर्म, डिटैच्ड कर्म मतलब अभी अभी ये कर रहे, अभी अभी योग, उस योग में किसी ने उठा दिया बीच से और कहा अभी ये सेवा करो, वो उधर अभी सेवा करते करते तुरंत बोला अभी योग, तो योग, अभी अभी ज्ञान चिंतन, तो अभी अभी ज्ञान चिंतन, चर्चा, मनन, अध्ययन, अभी अभी एकांत, और अभी अभी संगठन। आज की मुरली में डबल विदेशियों से मुलाकात, अंतिम पैराग्राफ बाबा ने कहा है इनमें एक विशेषता है। मैं किसी और रीति से उसको कह रहा हूं, बाबा ने किसी और रीति से कहा, वो पहले इंडिपेंडेंट रहते थे, अभी 6-7 लोगों के बीच रहते हैं, ये इनकी विशेषता है। और संस्कार मिलाकर चलते हैं, एक है इंडिपेंडेंट, एक है गैदरिंग, अकेले रहना और सबके बीच में रहना। बाबा यहाँ उनकी महिमा इसलिए कर रहे हैं कि पहले अकेले थे, इंडिपेंडेंट रहते थे, अभी संगठन में एक एक 5-6 के साथ रहता है, चाहे कमरे में या वैसे सेवा में, तो ये उनकी विशेषता है। अनासक्त कर्म में यही पॉइंट इस रीति से लिया जा सकता है कि संगठन में रहना और तुरंत एकांत में भी रहना, ये भी दोनों आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि जिसको एकांत में रहने की आदत है फिर उसको संगठन बिल्कुल ही पसंद नहीं, या ऐसा भी नहीं कि जिसको संगठन में रहने की आदत है एकांत में रखो तो भय, नींद नहीं आना, डर लगना, कोई तो चाहिए। कमरे का रूम पार्टनर अगर कहीं चला गया गांव तो किसी और को बुलाना सोने के लिए, डर लगता है कोई आ तो नहीं जाए खिड़की से, कहीं जाना है किसी स्थान पर, अकेले जा सकते हैं पर कोई साथ में, सिक्योरिटी की बात दूसरी है, मतलब अवलंबन है किसी और के ऊपर, ये भी अनासक्त नहीं हुआ ना। 10 लोगों के बीच में आज है, यहाँ क्लास चल रहा है, सबके बीच में संगठन में पढ़ाई पढ़ रही है, ये संगठन अगर बंद हो जाए तो पढ़ाई बंद, ये भी डिपेंडेंस है। तुम एक एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ, इंडिपेंडेंट तकदीर हर एक की, किसी पर भी आधार नहीं है हमारा, आज सेंटर है कल नहीं रहेगा, आज मुरली मिल रही है कल नहीं मिलेगी, आज संगठन में क्लास हो रहा है कल नहीं होगा, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल सब बंद हो जाए फिर
बड़ी शांति हो जाएगी।
नहीं, पर ज्ञान और योग जो हमको, ज्ञान के जो जल्दी जल्दी मिल जाता है वो नहीं मिलेगा, सारे साधन बंद हो जाए तो वो सारा गुम हो गया। तो जितना मटेरियल है ज्ञान का, सोचो सब चला गया, कुछ नहीं रहा, अभी हम खाली है ऐसे।
फिर पुरुषार्थ अच्छा, फिर तरफ बढ़ेगी
मुरली, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब चला गया, बस वो एक ही धन संपदा है जो कोई चुरा नहीं सकता, जो खो नहीं सकता, जा नहीं सकती कहीं। हाँ, तो वो इसके लिए अपने आप को ऐसे समझना कि ये आज सब है कल कुछ ना होगा। हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट और गैदरिंग, अकेले रहना, इंडिपेंडेंट सब कुछ करना, अभी अभी इंडिपेंडेंट सब कुछ किया, अभी अभी पहले एक ही सेवा, जब अंग्रेज भारत में थे तो एक व्यक्ति 10 लोगों का काम करता था, अभी वही काम 10 लोग करते हैं, फिर भी इतना नहीं होता है। चलो वो बात छोड़ो, यज्ञ की बात ले लो, यज्ञ में कुछ समय पहले 20 साल पहले एक भाई पूरा डिपार्टमेंट देख लेता था, मल्टीटास्किंग, ये भी किया फिर वो किया, अभी वो किया वो किया वो किया वो किया, सब कुछ करता था एक ही व्यक्ति, और अभी वो एक ही कार्य करने के लिए हाँ वो सब भी एक्यूरेट, अभी वही कार्य करने के लिए, वही डिपार्टमेंट, वही कार्य करने के लिए 10 लोग हैं, फिर भी कम पड़ते हैं, फिर भी उसमें बहानेबाजी और सब कुछ है। हाँ तो ये भी जो है अनासक्त कर्म हमारे तब होंगे जब हम इंडिपेंडेंट भी, अभी अभी इंडिपेंडेंट है तो भी ठीक, अभी 10 लोग आ गए और उनके बीच में रहना है, दो पॉइंट है, एक 10 लोग आ गए सेवा में मदद की तो भी ठीक, उसमें भी अनासक्त, सेवा के 10 लोग है, 10 माताओं के बीच में अगर किसी माताओं को रहना पड़े कमरे में, हाँ खर्राटे वाले, उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं रहा जा सकता है, ज्ञान बहुत ज्यादा चाहिए। अगर कोई माता को आदत नहीं है, VIP माता है, और उसको बोलो बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, मधुबन में सेवाधारी बनकर रहना बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है,
रहना ही साधना है।
यहाँ रहना ही साधना है, सेवाधारी बनकर यहाँ रहना बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। बिना अगर ज्ञान अगर कम है तो हर दिन डिस्टरबेंस होगा। वहां तो कुछ तीन चार लोग थे अलग संस्कार वाले, यहाँ सागर है भिन्न भिन्न संस्कारों का, ऐसे टकराते हैं लहरें, लहरों से टकराती है, उर्मी उर्मी से टकराती है, उर्मी तरंग लहर वेव। तो ये तो सागर है, इसमें तो लहरें उर्मियां तो आती ही रहती है, टकराती रहती है एक दूसरे से। तो यहाँ रहना, उसमें भी अनासक्त करना, और क्या करेंगे, एक तो ये हो गया ड्रामा वाली पॉइंट, और अनासक्त कर्म हो, कर्म किया और पता नहीं क्या किया, इतनी अनासक्ति हो, बस वो कि कोई पावर आई उसने कराया हमसे, ये भी भाव कि वो करा रहा है, उसके थ्रू हो रहा है, उसकी शक्तियों के थ्रू ये सारे कार्य हो रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम में इतनी ताकत नहीं है ये सब करने की। और वो करा रहा है, कर्मों अनुसार सब कुछ हो रहा है। हमें जो बचपन से जो ट्रेनिंग दी गई है, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको मोह की ट्रेनिंग दी जाती है, माँ बाप उसको मोह की ही ट्रेनिंग देते हैं, सब उसकी चेष्टाएं जो है वो मोह से संबंधित है, सब जगह उसका मोह रहता है, माँ बाप में मोह, माँ बाप उसको प्यार इस तरह से करते हैं कि वो केवल हमसे प्यार करे बस, माँ उसको ऐसे प्यार करती है कि वो मुझसे प्यार करे और किसी से ना करे, बाप उसको ऐसे प्यार करता है कि वो मेरे से प्यार करे। साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड जो है उसने इसे एक शब्द में संबोधित किया है, फिक्सेशन, जो हमारे ज्ञान की भाषा में उसे हम मोह कहते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में दिस इज नोन एज फिक्सेशन। फिक्सेशन पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है साइकोलॉजी में। तो फिक्सेशन अर्थात वह मोह, वो बचपन को बच्चे को वैसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, माँ को पीड़ा होती है सूक्ष्म में अंतर में जब बेटा किसी और स्त्री से प्रेम करता है, सूक्ष्म में अंदर से दिखाती है कि खुश है परंतु उसको पता है मेरे प्रति प्यार कम हुआ है और किसी और के प्रति बढ़ गया है और स्त्री के प्रति, तब उसे दुख होता है एक रीति से, ऐसा फ्राइड का कहना है। बाप को भी वैसा ही होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग ही मोह की दी गई है कि मुझ में मेरे में प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो। तो ये जो ट्रेनिंग है बचपन से, हर चीज में मोह, हर कर्म में भी, कर्म के प्रति कामनाएं हैं, ये काम करो तो फिर फर्स्ट आओगे, बचपन से यही ट्रेनिंग है ना, तुम्हें फर्स्ट आना है, वो बाजू वाला लड़का है ना उसने पिछली बार वो फर्स्ट आया था, इस बार तुम्हें फर्स्ट आना है। कर्म ही इस तरह से सिखाए जाते हैं कि जिसमें आसक्तियां हैं, जिसमें कामना है, इच्छा है, डिजायर है, निर्वासना का जीवन उसे कभी नहीं सिखाया जाता है, उसे कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड सिखाया जाता है बचपन से ही, उससे तुम्हें आगे बढ़ना है, इससे तुम्हें खेलकूद में तुम्हें आगे बढ़ना है, हर चीज में इस तरह की ही ट्रेनिंग है। और ऐसा ही जो व्यक्ति है वो एक दिन बहुत सारी सफलता पाता है, ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, और फिर आसक्तियों में फंसता है, मोह में फंसता है, और फिर अचानक यहां आ जाता है। और यहाँ बाबा कहते हैं हर कर्म अनासक्त भाव से करो। अचानक कैसे करेगा, उसकी बचपन से लेकर अब तक की ट्रेनिंग सारी मोह की है, आसक्ति की है, निर्वासना का जीवन कैसे जिएगा, वासनामय जीवन है, कामनामय जीवन है, अचानक निर्वासना जीवन बन जाए, इतना आसान नहीं है। बाबा को अच्छा नहीं लगता है फिक्सेशन हाँ ये भी एक है, एक मार्ग ये भी है कि बस ये मुझे थोड़े समय के लिए मैं यहाँ हूँ, ये घड़ी अंतिम घड़ी है, पता नहीं बाद में ये कब कर्म करूंगा, इसके लिए कर्म किया और अनासक्त हो गए, क्या उस कर्म के भी प्रति याद करो। एक बार सूरज भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक माता थी, कभी उसको ज्ञान सरोवर में आई थी, तो ज्ञान सरोवर में उसको एक बार चांस दिया गया कि भाई गीत गाओ, गीत गाया ज्ञान सरोवर में, उसके बाद इतना अहंकार आ गया कि बात मत पूछो, सारे इधर बस यही कहती थी कि हमने मधुबन में गीत गाया, मधुबन में गीत गाया, परेशान कर रखा है। उसके युगल बाद में सूरज भाई से मिले और कहे क्या करे अब, जब भी कुछ कहते होते कि मैं तो मधुबन में भी गीत गाती हूँ, मेरा तो बहुत अभी जो गीत गाया जो लोगों ने सुना उनको पूछो किसी को क्या याद है, उनके लिए तो रोज का है, आते हैं कोई ना कोई गीत गाता है जाता है, किसी को कुछ खबर नहीं याद नहीं, इतने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं किसको कहाँ पता है, किसको याद है, हम सोचते हम ही बहुत है, किसको कहाँ पता है। तो ये ऐसी बात इधर भी है, हम सोच रहे हमने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छा कुछ लिखा, अरे दुनिया में हजारों किताबें पड़ी हुई है, कौन क्या लिख रहा है, हम सोचेंगे हम बहुत अच्छा चित्रकारी की कितना बढ़िया पेंटिंग है, लोगों को पूछो वो वहां चित्र लगाते याद है क्या, क्या किसको पूछो, हर एक अपने ही दुख दर्द में खोए रहते एक साकार मुरली में था, हर एक व्यक्ति अपने ही दुख दर्द में खोया रहता है, उसको क्या कहना है तुमने कौन सी साड़ी पहनी है और तुमने बालों को क्या लगाया है और क्या कौन सा गजरा लगाया है और कौन सी चप्पल और कौन सी घड़ी तुम्हारी है और कौन सा किसी को क्या लेना देना है, हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा कुछ किया, किसी को पूछो सभा में किसी को कुछ पता नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या अपनी मन में क्या क्या रहता है उनका, तो हम जो कर्म करें अनासक्त हो जाए, चित्र निकालो अनासक्त हो जाए, कविता लिखी अनासक्त हो जाओ, भाषण दिया अनासक्त हो जाओ, श्रेष्ठ कर्म किया अनासक्त होगा, पुण्य कर्म किया अनासक्त हो गया। यही मुरली आज की जो मुरली है जो उसमें छपा नहीं है पर टीचर से मुलाकात है इस मुरली में, बाबा ने तो वहां अंत कर दिया मन के बंधन में पर उसके आगे टीचर से थोड़ा मुलाकात है, उसमें एक बहुत अच्छी बात है, बाबा ने कहा टीचर समझोगे तो रौब आएगा, इसके लिए अपने आप को मास्टर शिक्षक समझो, मास्टर शब्द जब अटैच हो जाता है तो जिसने दिया है उसकी स्मृति रहती है, जिसने निमित्त बनाया है उसकी स्मृति रहती है, तुम हो कौन कुछ करने वाले, संगम युग पर सारे ही कर्म ईश्वरीय कृपा दया आशीर्वाद से हो रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, उसकी दया कृपा आशीर्वाद अगर छीन ली जाए हमसे तो गिर पड़ेंगे, जिसके लिए यहां पर किसी कर्म का अहंकार आना कि मैं ये कर रहा हूं मैंने ये किया, ये मूर्खता है, निरा मूर्खता, कोई भी कर्म हमसे श्रेष्ठ कर्म वो करा रहा है, परंतु ये जागरूकता होनी चाहिए निरंतर और सतत, कंप्लीट अवेयरनेस कि हम केवल एक निमित्त है, ये कह देना बोल देना ये कहने बोलने की बात ही नहीं है, निमित्त का भी निमित्त, निमित्त हो ये कहना भी निमित्त, ये वाक्य ये भाषा इतनी सरल हो गई बाबा ने निमित्त बनाया, अंदर में मैं और ऊपर बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने ये कार्य किया, बाबा ने वो कार्य किया, बाबा ने ऐसा करा है, बाबा ने वैसा करा है, कहने की भाषा ब्राह्मणों की तो आसान हो गई है पर अंदर वो भाव इतना प्रगाढ़ है कि मैंने ये किया, ये कार्य सब अंदर करना है, ऊपर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर कोई किसी को दिखाने का भी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो आज से या उस दिन मंजू मैंने जैसा होमवर्क दिया था ना 24 घंटे वाला 6:30 से 10 बजे 10:30 बजे तक का, वैसे ये एक दूसरा होमवर्क है आज 6:30 से 10:30 बजे तक, कर्म करते हुए अनासक्त भाव, कर्म करते हुए कोई भी कामना नहीं, कर्म करते हुए किसी से कुछ मांगना नहीं, कर्म करते हुए किसी से कुछ लेने का भाव नहीं, कर्म किया परंतु ये भाव नहीं कि कोई आकर कहे कि बहुत अच्छा किया, रंगोली निकाली और हम किसी ने आके अब तक नहीं कहा कि अच्छी निकाली तो कितना बुरा लगता है, इधर निकालते ना बड़ी वाली, या कोई हमने कविता लिखी और किसी ने कहा ही नहीं अच्छी लिखी तो कितना बुरा लगता है, ये कामना ये भाव जो भी हम कर्म करें अर्पण उसको समर्पण, अभी ना हमें उसका कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये एक अभ्यास करना है, आज बहन जी कहना नागेश भाई का, अच्छा अनासक्त भाव इसकी की प्रैक्टिस, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, और कुछ भी याद नहीं, सब भूल गए।